रत्नों में हमारे मोहन भाई भी हैं। 1961 एंड या स्टार्टिंग 1962 कहें, तब से आपने इसी ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। मैं भी जब ज्ञान अमृत में आपका लेख पढ़ रही थी, एक अनुभव आपने लिखा था कि किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज में करते हुए भी आपने बाबा को पहचाना और निश्चय बुद्धि दृढ़ता, क्योंकि जहां कॉलेज में हॉस्टलों में रहना पड़ता है तो कुछ संघर्ष की बातें तो आती हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे में भी आपको बाबा का सेंटर कैसे नजदीक मिला, सुविधाएं भी मिली, ये एक निश्चय की बात है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आज का जो विषय आपने लिया है, शायद यही विषय आपके जीवन के अनुभव का है, मन जीत। सचमुच आपने अपने मन पर भी ऐसी विजय प्राप्त की है और साथ साथ आप साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने बहुत सुंदर एक एग्जीबिशन भी बनाई है, आपदा प्रबंधन, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय कोई न कोई आपदाएं आती हैं, तो उस समय हम किस प्रकार के प्रबंधों को करें। वे एग्जीबिशन भी बहुत सुंदर, जिससे कई आत्माएं लाभ भी लेती हैं। ज्ञान सरोवर एकेडमी में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हर प्रकार की सेवाएं आप बड़े ही दिल से, बाबा के ऊपर इतना फेथ रख करके, अनेक अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय, विज्ञान और ज्ञान, जिसको बाबा मुरलियों में कहता साइंस और साइलेंस की शक्ति का मिश्रण, वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपने प्रैक्टिकल में किया है। देश विदेश के कई स्थानों पर भी आपने विशेष सेवाएं की हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूं कि आपने साकार बाबा की पालना बहुत ली है। अभी अभी बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि 18 जनवरी वह दिन जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, वह दिन आप मधुबन में थे। मैं समझती हूँ कि इस पॉइंट को भी आप जरूर टच करेंगे कि उस समय की स्थिति कैसे मन पर हमारा कंट्रोल रहा, वह भी हमारे समक्ष रखेंगे। आज का आपका विषय है मन जीते जगत जीत। तो मैं मोहन भाई से निवेदन करती हूँ कि इस विषय पर प्रकाश डालें।
ओम शांति। जहाँ जीत शब्द आता है या विजय जीत, वहाँ क्या होता है? खुशी होती है, उमंग उल्लास बढ़ता है, और विशेष करके ऐसी जगह जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है, मन के लिए क्या कह दिया है, मन बड़ा चंचल है, मन को नहीं कंट्रोल किया जा सकता आदि आदि, तो वास्तव में मन जीते जगत जीत। हमारा पूरा ज्ञान इसी के ही चारों तरफ जीतता घूमता है, जितना भी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान मार्ग में, ज्ञान हो चाहे योग हो चाहे सेवा या धारणा, कोई भी विषय, सब का सार क्या है? क्या सार है? है? मन को वश में करना। तो हम सब लोगों के सामने तो साकार ब्रह्मा बाबा ही अभी तक एक हैं, जिन्होंने मन को जीत कर जगत जीत पद पाया और हम सब बच्चों को भी उसी राह पर ले जा रहे हैं। तो ये मन जीते जगत जीत, यह बात हम सबको यदि बुद्धि में रहे कि किसी भी हालत में मुझे मन के वशीभूत नहीं होना है, तो बस हमारा पुरुषार्थ सब बहुत सहज और सहज ही होता चलेगा। बाबा को हम देखें, मुझे बाबा के साथ रहने का भी काफी मौका मिला और अंतिम दो दिन तो पूरा दिन 17 और 18 बाबा के साथ ही साथ थे यहाँ पर। तो उसमें हमने देखा, जब शुरू से बाबा को देखा, तो जब 1962-63 में बाबा से मिलते थे, बाबा हम लोगों की बातें सुनते थे और सुन करके समाधान देते थे, पूरा बात बाबा सुना करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जब 65-66 में मिलते थे बाबा से, तो 2-3 लाइन ही बोली, कोई बात पूछनी होती थी सेवा की, पर्सनल पुरुषार्थ की, तो 2-3 लाइन सुनते ही बाबा कहते थे बाबा समझ गया। हम लोग कहते थे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, अभी तो पूरी बात बताई नहीं। बाबा कहते थे नहीं, बाबा समझ गया और बाबा उसका समाधान दे देते थे। और जब अंतिम दो दिनों में हम बाबा के मिले, तो मन जीते जगत जीत का पूरा स्वरूप बाबा का देखने को मिला। कैसे? बाबा से लगभग 6-7 बार मिले उन दो दिन में। तो बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे दृष्टि देते थे और दृष्टि दे के बाबा कहते थे कि बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब शुरू में बहुत पूरी बात बताने की जरूरत पड़ती थी 62-63 में, बाद में थोड़ी सी बात बताने की, लेकिन अंतिम दो दिनों में हमने एक बार नहीं 6-7 बार ये अनुभव किया। बाबा के सम्मुख जाते थे, आज हम सेवा की ये बात पूछेंगे, आज हम धारणा के ऊपर ये बात पूछेंगे बाबा से। बस दृष्टि देते ही बाबा जैसे मन में उतर जाते थे और मन की बात परख करके पूरी एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, बड़ा आश्चर्य होता था। तो ये है मन जीते जगत जीत का एक लक्षण। हम सबको भी बनना है ऐसा, तो हम लोग भी धीरे धीरे देखते चले कि हम लोग इस अवस्था को प्राप्त करते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा मम्मा की जो भी बातें सुनते हैं, उनका भाव यही होता है कि हम भी उनके समान बने, उनकी तरह ही अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बने, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें। तो बाद में 18 जनवरी को तो जब बाबा ने शरीर छोड़ा, और उसके बाद हमने जब वरिष्ठों से पूछा ये कैसे होता है, होता था बाबा से के सम्मुख जाते थे, बाबा पूरी बात समझ जाते थे, तो बताया कि देखो जैसे पानी होता है ना, पानी में लहरें नहीं होंगी तो हम अपनी छवि भी देख सकते हैं अच्छी तरह स्पष्ट, कोई भी देख सकता है। लेकिन अगर एक छोटा सा कंकड़ भी पानी में डाल दो, पानी में लहरें पैदा होने लगेंगी, न अपनी छवि न कोई दूसरे की, कोई देख रहा हो उसकी छवि स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये भी वो आत्मा दूसरे के मन के भावों को जान सकती है जिसने अपने मन को पूरी तरह जीता हो, अपने में कोई भी संकल्प न हो और जो इच्छा मात्रम अविद्या हो चुकी हो। तो यदि हम भी ऐसी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो हमें भी बाबा की तरह इच्छा मात्रम अविद्या होना पड़े। धीरे धीरे अपने को हम देखते चले, इच्छाएं होना कोई गलत बात नहीं है, इच्छा होती है, भी तो एक इच्छा है, मैं पास विद ऑनर्स हूं, बाबा ये सेवा जो करा रहा है, बाबा कह रहा है मंशा सेवा, मंशा के द्वारा सर्व विश्व की आत्माओं तक पहुंचे, ये भी शुभ इच्छाएं हैं। लेकिन बाबा का भाव क्या है कि इच्छाएं हमारे वश में रहें, हम इच्छाओं के वशीभूत न हो जाए। अक्सर होता क्या है कि जो भी इच्छाएं होती हैं वो मन में संकल्प के रूप में, स्वप्न में, वृत्तियों में रिफ्लेक्ट होती रहती है और वो कई बार हमें परेशान कर देती है। तो इस कारण से ये देखते चलना है, हम शुद्ध संकल्प हों, लेकिन ऐसा न हो मानो हम योग करने बैठे और करने तो योग बैठे हैं बाबा से, लेकिन उस समय वो इच्छा भले शुद्ध संकल्प है, सेवा का संकल्प है, किसी कोई ऐसा संकल्प है जो बाबा चाहता है, लेकिन वो भी ठीक नहीं। अभी थोड़े दिन पहले गुलजार दादी जी एक क्लास करा रहे थे कि अभी हम ब्राह्मण बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं आते, लेकिन ये व्यर्थ संकल्प आते हैं और ये भी व्यर्थ की श्रेणी में आता है कि अगर हम कोई भी बस बाबा से रूहवान की इच्छा है, फरिश्ता बिंदी स्वरूप की इच्छा है, बस ऐसा इच्छा है कि बाबा से हम शक्ति खींचें, लेकिन उस समय अगर कोई दूसरे संकल्प आ जाते हैं तो ये व्यर्थ संकल्पों में ही काउंट होगा। इसीलिए यदि हमें ऐसा बनना है और इसकी आवश्यकता है, जो बाबा से हमने देखा, अंत में हम लोगों के द्वारा विश्व की समस्त आत्माएं ये महसूस करेंगी कि हाँ, ये जो आत्माएं हैं ये वास्तव में मन जीते जगत जीत आत्माएं हैं, वो भी हमारे सम्मुख, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो भी आत्माएं आएंगी बहुत कुछ इच्छाएं लेकर हमारे सम्मुख आएंगी, और इसीलिए हमें अंत समय के हिसाब से अपने को तैयार करना है। तो बाबा ने भी ये कैसे प्राप्त की, तुरंत ही नहीं होगी बाबा के पास भी ये स्थिति, ये अवस्था बाबा ने नहीं प्राप्त की। हम सब लोगों को एक पत्र दिया गया था, जो सीनियर भाई लोग थे, बहुत साल पहले, आज से करीब 30-35 साल पहले, आनंद किशोर दादा ने बाबा के हाथ का लिखा हुआ पत्र। बाबा ने जब ये अनुभव किया होगा 1936-37 में, जब ज्ञान में आए कि मन तो भाग जाता है, बड़ा चंचल है, चाहते हैं लाना लेकिन बार बार भाग जाता है, तो बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा। बड़ा विचित्र पत्र था, उसका भाव ये था, बाबा ने मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन मंत्री होते हुए भी तूने मुझ आत्मा राजा को इतना वशीभूत कर लिया, मुझे कमजोर कर दिया कि तू जहां जहां कहता रहा, जाता रहा, मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा, और मैं इतना कमजोर हो गया कि मैं हूं राजा लेकिन तुझ मंत्री ने मुझे वशीभूत कर लिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वमान में अपने स्वधर्म में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरी आज्ञा माननी ही होगी। ऐसा बाबा ने पत्र सिंधी में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद करके हम लोगों को दिया गया था। तो हम भी ये अपने से पूछें कि अगर हम चाहते हैं वास्तव में, तो बाबा ने जो किया वैसा मैं कर रहा हूं, मैंने भी मन को ऑर्डर किया है, या ये कह के बस चुप हो जाते हैं, क्या करें, कोशिश तो कर रहे हैं मन को वशीभूत करने की, लेकिन अभी भी मन भाग जाता है। नहीं, बाबा ने कहा। और इसमें ये कब होगा? मानो हम किसी स्वमान की, किसी शक्ति की इच्छा रख रहे हैं, मन को चाहते हैं वश में करना, तो उसका मेथड क्या है? जैसे लौकिक में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, या अभी एक महीना पहले तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अभी मोदी हो गए, तो अभी कोई जाएगा कांग्रेस के पास या मनमोहन सिंह जी के पास, तो कोई उनकी बात मानेगा? वो अगर बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सीट पर नहीं। ऐसे ही हम भी बिना स्वमान की सीट पर स्थित हुए अगर ऑर्डर करते हैं ना, तो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार कोई भी हमारी बात नहीं मानते। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने को स्वमान की सीट पर स्थित करें, और स्वमान की सीट पर स्थित करके तब हम कोई भी ऑर्डर करेंगे, तुरंत वो शक्ति जिसको ऑर्डर किया वो शक्ति आएगी, जिस स्वमान को ऑर्डर किया वो स्वमान में स्थित हो जाएंगे। और पहले और सबसे बड़े से बड़ा स्वमान कौन सा है? कौन सा? जो ब्रह्मा बाबा ने भी प्रैक्टिस किया, अब तो सब याद आ जाएगा ना। क्या है? हाँ, बाबा ने भी लिखकर, सबने सुना है ना, पढ़ा है ना, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है और निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुत्र हो, पुत्री हो, युगल हो, सबको बाबा ने लिख के पक्का किया। लेकिन पक्का करने का कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि हाँ मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ। तो इसीलिए बाबा ने ये लिख 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 के पक्का किया। और उसका प्रमाण ये होता था कि जब भी हम लोग आते थे, बाबा से मिलते थे, बस बाबा आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जो बाहर चित्र भी लगाए ना, बाहर देखा है आपने, ऐसा प्रैक्टिकल में बाबा ऐसे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, बस बाबा ऐसा करते थे। और हम जैसे चुंबक की तरह, बस मतलब चाहे ना चाहे एकदम बाबा की वहां में खींच के आ जाते थे। और फिर क्या होता था? वो तो आ गए, लेकिन विदेही हो जाते थे, तुरंत अशरीरी हो जाते थे, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते थे। जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, जैसे ही बाबा का स्पर्श हुआ, तुरंत देह से परे हो जाते थे। कुछ सेकंड वो स्थिति का आनंद लेते थे, फिर बाबा हाँ बच्चे आओ 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 बच्चे वापस आओ आओ। कोई आत्मा जाती नहीं थी, लेकिन इतनी विदेही हो जाती थी कि बाबा ऐसे करके अनुभव कराते थे। और फिर जब हम आते थे फिर से, दिल तो नहीं होती थी, फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और इसके बाद एक जाता था, दूसरा आता था, उसको हर एक को ये अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि बाबा खुद आत्मिक स्वरूप में, विदेही स्वरूप में इतने स्थित हो गए थे कि बस जिसको भी बाबा दृष्टि देते थे वो एकदम अशरीरी हो जाता था, उसे देह में लाना पड़ता था। तो ऐसे हम भी देखें कि इतने सालों से हम लोग रोज मुरली सुन रहे हैं, बाबा की बातें और अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन हम कितना भी देही हुए हैं, जिसको भी देखते हैं, बस क्या वो भी आत्मा अशरीरी हो जाती है, विदेही हो जाती है? एक एक बात को हम बाबा से चेक करते चले, और विदेही का ये ही है, कोई भी बात जो होती है ना, शुरू होती है मन से। बाबा ने भी मन में ये जब ठान लिया था, सबने सुना है ना कि बस बाबा ने जब ये ज्ञान मिला तो गुलजार दादी जी ध्यान में गए, तब तक सूक्ष्म वतन का इतना पार्ट नहीं था, तो वहां जब उन्होंने देखा कि बाबा की शक्ल का ही सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा को, तो वो आए और मम्मा से कहा कि आज मैंने बाबा को वहां देखा। तो फिर उसके बाद मम्मा ने कहा अच्छा, तो गुलजार दादी तब 9 साल के थे, तो बोला कि वो कौन थे, पूछा, तो मम्मा ने कहा मुझे भी नहीं मालूम, बाबा से पूछो। बाबा से पूछा, सबने सुनी होगी ये यज्ञ की बात की, तो बाबा ने कहा अच्छा मुझे भी नहीं मालूम बच्ची, अगली बार जब ध्यान में जाना तुम उन्हीं से ही पूछना कि आप कौन है। तो अगली बार जब ध्यान में गई, वहां पर जाके गए तो अव्यक्त वतन वासी ब्रह्मा थे, पूछा आप कौन है, तो बताया कि बच्ची मैं जो तुम्हारे साथ बाबा है ना, तो मैं उन्हीं का ही संपूर्ण स्वरूप हूँ, और जब वो संपूर्ण हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे समान हो जाएंगे, तो सूक्ष्म वतन में आ जाएंगे। हरेक का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, यानी कि हम सब का भी हम इमेजिन करते हैं, अभी हम ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही, लेकिन उस सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता जब हम बनेंगे तो हमारा भी बिल्कुल वही स्थिति होगी। तो जब वो गुलजार दादी वापस आए तो बाबा को बताया कि बाबा वो हैं बिल्कुल आपके समान, लेकिन उनमें बहुत लाइट है, आंखों में बहुत चमक है, एक एक शरीर से एकदम लाइट लाइट फूट रही है, लाइट का ऑरा है बस, लेकिन शक्ल सूरत आपकी तरह है। तो बस जब से बाबा ने सुना कि वो मेरा संपूर्ण स्वरूप है, मुझे वैसा बन, तब से बाबा को एकदम लगन लग गई मुझे वैसा बनना है, वो बनना है, वैसा बनना है, ये देह के संबंधों को भूलना है, क्योंकि ये देह तो नहीं रहनी है, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा। तो ऐसे ही हम सबको भी, भले हमें अपना कोई ऐसा सूक्ष्म स्वरूप, लेकिन अपनी शक्ल सूरत तो हम सबको मालूम ही है, तो अपना ऐसा सूक्ष्म स्वरूप, हम लाइट का स्वरूप इमेजिन रोज करते रहें, देखते रहें कि कितनी मुझ में लाइट और बढ़ती चली जा रही है, और कैसे हम फिर सतयुग में तो बनेंगे लक्ष्मी नारायण, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति हमें प्राप्त करनी है, वो स्थिति की तरफ हमारी जो बाबा को जैसे लगन थी वैसी लगी रहे, एक ये देखते चलना है। और क्या साथ में कि बाबा से ना, जब बाबा ने बताया है, बच्चों के सामने पेपर तो बहुत आएंगे, आप सबने भी सुना हुआ है क्या क्या पेपर आने हैं, भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, खाने का, जल का, वायु प्रदूषित आदि आदि, इन सब का भी अभाव होता जाएगा, और 5 संस्कार पुराने संस्कारों का और विकारों का पेपर, प्रकृति के 5 तत्वों का पेपर आदि आदि सब बाबा ने बताया है, भटकती हुई आत्माओं का पेपर आदि, ये सब बातें बताई हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण बाबा ने बताया है कि 2 विशेष पेपर बच्चों के सामने विशेष आने हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था, कौन से 2 पेपर, शरीर का भी और ब्राह्मण परिवार का भी, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। तो शरीर का पेपर कैसे जीतेंगे, माना शरीर का पेपर आया, जो बुजुर्ग है बीमार है वो तो ठीक है, लेकिन जो यंग है आप जैसे है वो कैसे जीतेंगे है? बाबा को इसका एक अभ्यास बहुत पक्का था, कैसे था है? जब चाहे देह में आना और जब चाहे देह से न्यारे हो जाना। बाबा जब मिलते थे ना तो 3 जगह इस मधुबन में थे जहां पर बाबा मिला करते थे, अगर 1-2-3 लोग ही होते थे तो बाबा अपने कमरे में मिलते थे, तब ये कमरा इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ उतना था जहां पर बाबा का पलंग आता है, बस पलंग खत्म हो जाता है, उतना ही बहुत छोटा कुछ 6x8 का या 8x10 का कमरा था बस, और पीछे से उसका दरवाजा था, आगे तो ये सब बाद में बनाया है। तो इतना छोटा सा उधर बाबा का वो गद्दी पड़ी हुई है, बाबा उस पर बैठा करते थे, सामने जो खुली जगह है वहाँ चटाई वगैरह होती थी, वहाँ 3-4 लोग बैठ जाते थे और बाबा से मिलते थे, बात करते थे। जब थोड़ा ज्यादा 7-8 की पार्टी होती थी उस कमरे में नहीं आ सकते थे तो बाबा की झोपड़ी में मिला करते थे। उस समय झोपड़ी भी कच्ची थी लेकिन लगभग ऐसी थी, और जब पार्टी बड़ी होती थी उस समय तो 20-25 की पार्टी बहुत बड़ी मानी जाती थी, तब फिर हिस्ट्री हॉल में मिला करते थे बाबा। तो जो टाइम दिया हुआ होता था पार्टी को उस अनुसार व्यक्ति जाते थे, मानो अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, सबको टाइम दिया है। एक का टाइम 10 बजे है, दूसरे का 10:30, फिर 11, 11:30 ऐसे। तो जब टाइम होता था टीचर इंचार्ज जो पार्टी लेकर आई हुई होती थी वो जाती थी बाबा के पास, देखती थी बाबा बस बैठा है, आंख भी खुली हुई है और कोई ध्यान में भी नहीं है, लेकिन अपनी लगन में इतने मगन है कि टीचर आई सामने फिर भी बाबा को जैसे ख्याल नहीं है, देह यहाँ पर है, देह से न्यारी अवस्था। टीचर बोलती थी बाबा बाबा, तो बाबा को थोड़ा सा कभी कभी जर्क जैसा लगता था। हाँ बच्ची, अच्छा आ गई हो? हाँ बाबा, मैं फलानी जगह से पार्टी लेके आई हूँ। हाँ हाँ बुलाओ, बच्चों को बुलाओ। तो सब आके बैठ जाते थे, फिर बाबा एक एक से मिलते थे, बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, सब समाचार। तो उसके बाद जब ये पार्टी का पार्ट पूरा हो जाता था, दूसरी पार्टी में भी कुछ टाइम होता था, बस बाबा फिर एकदम देह से न्यारा होके फिर जो बाबा ने बताया सूक्ष्म वतन या मूल वतन जो भी सैर या विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए, बाबा जैसे इस देह से न्यारे हो जाते। तो ये अभ्यास हम सब बच्चों को भी बहुत जरूरी है कि जब कार्य हो हम देह में आए और देह में आके पार्ट बजाएं, और जैसे ही वो कार्य पूरा हो देह से न्यारे हो जाए। ये बाबा का अभ्यास प्रत्यक्ष देखने को मिलता था, और इस कारण से ही फिर बाबा भी ना यही कहा करते थे, हाँ ये पेपर के लिए बच्चे ये अभ्यास जो है बहुत अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत बहुत अंत समय मदद देगा। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते थे बाबा के तीन, जो दो संदली अभी हिस्ट्री हॉल में पड़ी हैं, तो पहले 3 संदली पड़ी होती थी, एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा, और बीच की संदली खाली रहती थी। तो जब पार्टी वाले कोई आते थे वो आके एक एक भाई बहन वन बाई वन आते थे, अपना परिचय देते थे और क्या संकल्प लिया है और क्या पुरुषार्थ करके जा रहे हैं। 2 बार ये चांस मिलता था, एक बार जब आते थे तब परिचय वगैरह देते थे और क्या लक्ष्य लेके आए हैं, और जाने से पहले एक दिन भी फिर वहां बैठ के बताया करते थे हम क्या लक्ष्य लेकर जा रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा मम्मा हुआ करते थे, और जब मम्मा तो तब नहीं थे ज्यादातर समय, जितनी बार हम मिले, और बाबा देख करके कोई करेक्शन देनी होती थी, कोई डायरेक्शन बाबा देते थे, तो 1x1 सब जाते थे। तो इस तरीके से बाबा मुरली जब चलाते थे तो यहाँ पर एक ट्रांसलाइट का पिक्चर अभी भी है, कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का। तो कई बार बाबा को खांसी बहुत आती थी, गला साफ करना पड़ता था। सुना होगा आप लोगों ने क्या कहते थे बाबा खांसी को, है? नहीं, ये बाबा की सखी है, फ्रेंड है। मैं शिव बाबा को बहुत बार बोलता हूँ, बाबा मेरा इस सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ, है? ये कई बार मुझे बहुत परेशान करती है। तो शिव बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, ये तुम्हें भुगतना ही है। अगर मैं तुम्हें कुछ कंसेशन करूं तो सारे ये सब बच्चे मेरे ही हैं, हर एक को कंसेशन करना पड़े। तो जब ब्रह्मा बाबा को कोई कंसेशन नहीं कर्म भोग में, तो आपको या मुझे कुछ होगा नहीं। तो इसलिए जो कोई भी कर्म भोग आता है उसे हंसी हंसी चुकतू करते रहे। और बाबा कैसे करता था, देखो, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय, ये बाबा की मास्टरी थी। जैसे बस खांसी आई, मानो ओल्ड एज थी, बहुत सर्दी का मौसम भी होता था, तो खांसी आ रही है, आंख भी कई बार गीली हो जाते थे, ऐसा लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है। और लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा कहते थे, देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, इतने जन्मों का विकर्म है, कर्म भोग है, वो ये सब चुकतू हो रहे हैं, कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, ऐसा नया शरीर, नई दुनिया, नया होगा, बस सारा कितना खुशी आनंद हो गए। और एक क्षण पहले जो खांसी का इतना ज्यादा प्रकोप जैसे हो रहा था बाबा पे, अपनी इतनी स्वस्थिति से बाबा इस परिस्थिति को ऐसा बदल देते थे, बाबा का चेहरा ही बदल जाता था एकदम खुशी में चमकने, कल बाबा जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, ऐसा होगा, बच्चे तुम बच्चों को भी कोई भी पेपर आए बहुत खुशी होनी चाहिए, आनंद चेहरा चमकना चाहिए, कल हम जाके ऐसा बनेंगे। और खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए, वो तो मालूम है ना, बताओ कैसे खग्गी मारते हैं, हा? बाबा करके बताते थे, कल जाके मैं ऐसा बनूंगा मिशनु कृष्ण। तो लगता ही नहीं था कोई 93 इयर्स के बाबा कोई बैठे हैं, बस उस समय यही भासना आती थी जैसे मिशनु कृष्ण है, चमकता हुआ चेहरा और बाबा की ये जैसे बात। तो यही रूप बदलना, स्वस्थिति इतनी पावरफुल होगी परिस्थिति के वश में ना हो हम कभी, ये बाबा का प्रैक्टिकल देखने को मिलता था। कोई भी बात आती थी, कार्य समाजियों ने एक बार बहुत कलकत्ता में प्रदर्शनी वगैरह की थी, टेंट को आग लगा दी थी, कई बार साकार मुरली में भी आया है। तो हमारे उन दिनों तीन बहुत बड़े वकील भाई लोग हुआ करते थे, तो संतराम जी, त्रिलोक चंद जी, मोती चंद जी कानपुर के, तो उन्होंने बाबा को कहा, बाबा हमारे पास प्रमाण है, फोटोज है, हम अगर उन पे केस करेंगे तो बिल्कुल 100% हम जीतेंगे, और उनको बताना चाहते हैं। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, हाँ बाप कभी बेटा चाहे जैसे भी हो, बाप कभी बेटे के ऊपर ना केस नहीं, तुम बच्चों को भी ये देखना है कि कैसे हम उन्हें परिवर्तित करें। हाँ सावधानी लो, आगे से इंश्योरेंस कराओ आदि आदि वो बाबा कहते थे, लेकिन बाबा जो है कभी भी ये फीलिंग ऐसी नहीं आई कि हम बदला लें या उन पर केस करें आदि आदि। तो यही इसीलिए हमारा स्लोगन भी है, बदला न लो बदल के दिखाओ। तो ये बाबा का एक ये प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारी बातें होती थी, हम देखते थे बाबा कैसे एक एक बच्चे की पालना करता है। हमें याद है जब हम हॉस्टल में थे, हाँ 63 से 67, नए नए ज्ञान में 62 के करीब आए थे, 63 में इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में पढ़ने गए, तो बस वहां पर वो नहीं था कोई सेंटर तो था नहीं, धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में। तो हमने बाबा से कहा, हमारे लौकिक पिताजी तो चाहते थे वह इंजीनियरिंग पढ़े, हमारी उतनी दिल नहीं थी, तो पिताजी ने कहा चलो बाबा से पूछ लेते हैं। हमने कहा ठीक है, बाबा जो कहेगा वो करेंगे। बाबा के पास आए, यहीं पर ही हिस्ट्री हॉल में, इधर ही यहाँ झोपड़ी में बाबा से टर्न लगा मिलने का। एक भाई पहले गया, हमारे आगे दो कुमार और बैठे थे, एक तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, तब शुरू ही किया था, तो बाबा से पूछने आया, क्योंकि शुरू से ये होता था समय कम है, वो बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो वो आया, उसने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसे मैं ये हूँ और ये हमारा 4-5 साल का कोर्स है, और बाबा की क्या श्रीमत है। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्चे छोड़ो पढ़ाई इसको और बाबा की सेवा में लग जाओ। तो उस आया बाहर, हम लोगों ने पूछा, उसने ये बताया, चला गया। दूसरा आया बाबा से मिलने, वो बम्बई का था, तो दूसरा पूछा, तो वहां पर उसने उसका घर का बिजनेस था, ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन माता पिता ज्ञान में नहीं थे। तो उसने पूछा तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, पढ़ाई भले पूरी कर ली लेकिन माता पिता को बिजनेस में पूरा सहयोग देना है। और बाबा वो फिर मैरिज की बात बोलते हैं आदि आदि, नहीं बच्चे युक्ति से चलते रहना है लेकिन उनको पूरा सहयोग देना है, और ये मतलब ऐसा तुम्हें करना है। उसने भी समझ लिया, हाँ बाकी पढ़ाई आगे करने की जरूरत नहीं। हमारा टर्न आया तीसरा, हमने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा है, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे तुम्हें तो पढ़ना है। हमने कहा बाबा ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई, आपने अभी इन दोनों को बोला। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, हरेक की कर्मों की गति अपनी अपनी है। बाबा को तुम्हारे द्वारा क्या सेवा करानी है देश विदेश की, यहाँ भारत में अगर तुम पढ़ोगे नहीं, इंजीनियर नहीं बनोगे, तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कैसे सेवा होगी। तो तुम्हें पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, और उसके बाद बाबा खुद सेवा कराएगा। तो बाबा भले ब्रह्मा बाबा कहता मैं जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन हमें लगता है बाबा की हर एक्टिविटी से जैसे सब जानते थे, क्योंकि जिसको बाबा ने कहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में जो शुरू में पढ़ता भी था, तो बस 5-6 साल बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो देखो अगर वो पढ़ता भी तो पढ़ने के बाद इतना जॉब वगैरह नहीं कर पाता, और पढ़ाई नहीं समझ, और 4-5 साल तक जो उसने सेवा करी वो तो उसका भाग्य सदा के लिए बन गया ना। दूसरा जो भाई था उसका तो मदर फादर वगैरह का पूरा बिजनेस, ऐसी परिस्थितियां परिवार की बनी कि उसको संभालना पड़ा, और वो पूरा का पूरा अभी तक भी वो बहुत अच्छे रीति से बाबा का उनका बिजनेस फैमिली का वो पूरा उसके हाथ में, और बाबा की सेवा में बहुत बहुत धन लग गया और परिवार वाले भी ज्ञान में आ गए। और इस रीति से बाबा कई बार मुरलियों में जो बोलता है, लेकिन जैसे संघ का रंग लगता है तो शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी है, जानी जाननहार है। तो शिव बाबा जब ब्रह्मा के पास ही जैसे रहता था, तो ब्रह्मा बाबा भी कितनी बातें ऐसी हैं कि जो कि अभी समय के अभाव में नहीं सुनाते, लेकिन ऐसा कि जो बाबा भी त्रिकालदर्शी बन गया था, ऐसा अनुभव हम सबको होता था। तो पहला पेपर तो ये शरीर का कि बस देह में आने का, और जब चाहे देह से न्यारेपन का। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब शरीर में बहुत व्याधि भी होगी, बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर हमें शरीर से न्यारा होने का अभ्यास होगा तो वो दर्द होगा लेकिन उसकी महसूसता नहीं होगी, और बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा। और दादी जी को हम देखते थे, कुमार का बड़ी दादी जी को कितनी बार इतने ज्यादा डॉक्टर बोलता था, दादी आपको तो बहुत तकलीफ इसमें, तो बीमारी में दर्द बहुत होता है। दादी कहती थी नहीं मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। नहीं दादी आप हम लोगों का दिल रखने को बोल रही हो, कि नहीं नहीं वाकई बिल्कुल दर्द नहीं है। तो वही शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। और बस एक बार हमें भी इसका अनुभव हुआ, काफी हाई फीवर था, 104.5 के करीब, बहुत पेन था, नींद नहीं आ रही थी। तो उसी दिन ही बाबा की मुरली चली थी, अगर देह से न्यारे होंगे तो भले कोई भी शरीर में व्याधि होगी, तकलीफ होगी, उसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर देह में रहेंगे तो बहुत उस व्याधि का अनुभव होगा। तो बस एक ही संकल्प के साथ जैसे हम, और उसमें नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो भाई यही मैं न्यारी हूँ, मैं आत्मा न्यारी हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, एक ही संकल्प में इतने ज्यादा स्थित हो गए। कई कितनी बार रिपीट करते 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 जैसे एकदम नींद आ गई, और उसके बाद 4 घंटे तक जैसे ना बहुत अच्छी तरीके से नींद भी हुई और बुखार भी उतर गया। तो ये एक ऐसी चीज है कि थोड़ा अभ्यास में कठिनाई तो आएगी शुरू में, लेकिन ये अभ्यास अंत समय में देह से न्यारा होने में बहुत मदद करेगा। बाबा का भी देखा ना ऐसा ही, देह से न्यारा अंत समय में 18 जनवरी को बाबा मुरली चला रहे थे। खैर दूसरे पेपर की बात और बता दें कि बाबा दूसरा पेपर है ब्राह्मण परिवार का पेपर। जब सब देखेंगे ना तो किसी की हमने कोई बात देखी अगर तो इसको कैसे पार करेंगे, क्योंकि हरेक की अवस्था अपनी है, स्थिति अपनी है। कभी किसी की देखते हैं कमजोर अवस्था है तो अपने अंदर डगमग होने लगते हो, तो कैसे पार करेंगे इसे है? एकाग्र त्रिकालदर्शी और एक साक्षी होगा का कहना तो इजी है, लेकिन फिर भी इस स्थिति में स्थित ये समझें कि ये भगवान की चुनी हुई आत्मा। बाबा ने कहा है कि एक एक बच्चा मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ना वो मेरे आज दुनिया का जो फर्स्ट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनसे भी महान है। उसे मैंने चुना है, भगवान ने चुना है। आज भले उसकी ऐसी स्थिति हो लेकिन मुझे उसकी वो स्थिति देखनी है कि इसे भगवान ने चुना है। तो बात हो रही थी कि बाबा ने क्या कहा कि, क्योंकि पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक को कोई महाराजा महारानी, कोई प्रजा, कोई सब पद प्राप्त करना है, हर एक का अपना अपना है। तो कोई हो सकता है कि कोई बहुत पुराने भी हो लेकिन आज उनमें कुछ मर्यादा के विरुद्ध कोई बात अगर दिखाई देती है तो मन में संकल्प चल सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि हरेक को, हरेक बच्चा बाबा का सेलेक्ट किया हुआ बच्चा है। तो हम ये बात अगर बुद्धि में रखेंगे कि ये भगवान का सिलेक्शन है और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। आज भले उसकी ये स्थिति है लेकिन वैसे भी नाटक होकर होता है, नाटक में कोई हीरो हीरोइन होते हैं, कोई विलेन होते हैं, कोई कॉमेडियन होते हैं, कोई नाचने गाने वाले अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ये भी एक वैरायटी है और बाबा ने कहा ये वैरायटी नाटक मुझे अति प्रिय है। तो जो बाबा को प्रिय है वो हमें भी प्रिय है, इसलिए कभी भी किसी की अवस्था को देख करके ना हम अपनी अवस्था को ऊंच नीच न करें, क्योंकि अभी और समय में ऐसा बहुत काफी आना है। तो इस कारण से बाबा ने कहा बस यही सोचे भगवान की सिलेक्टेड आत्मा है और भगवान ही जिम्मेवार है, साक्षी दृष्टा हो जाए। कहना तो इजी है, साक्षी साक्षी कैसे होंगे, साक्षी दृष्टा। देखो ये तीन चार चीजें अलग होती हैं, देखा है ना, ये आंखें, ये दृष्टि है, देखने वाली आत्मा वो दृष्टा है, सामने जो देख रहे हैं वो क्या है, दृश्य है। और अगर जब हम इस भाव से देखते हैं कि मैं दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा इस दृश्य को देख रही हूं, तो हमारे दृष्टांत बन जाते हैं जो भक्ति मार्ग में शुरू से अंत तक चलते रहते हैं। तो इसीलिए इस स्थिति में स्थित होकर के अगर हम कोई दृश्य देखते हैं ना, तो वास्तव में बिल्कुल साक्षी स्थिति जैसे आत्मा की हो जाती है उस समय, कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसा अनुभव करते हैं। तो बाबा आज यही चाहता है हमें, तो इस रीति से एक ये हम अपने को करते चले। तो बाबा ने बताया है पेपर, हम बात बता रहे थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास की। तो हमेशा रात्रि क्लास यही 8:30-9:30 होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने बस 7 बजे के करीब 6:30 ही जमुना प्रसाद भाई को बुला के बोला कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा। तो उन्होंने बाहर एक घंटा रखा रहता था, बजा के सबको इन्फॉर्म कर दिया। सब भोजन वोजन करके इकट्ठे हो गए और उस दिन बाबा जैसे काफी पहले ही 7:15 ही क्लास में आ गए हिस्ट्री हॉल में। बस बाबा की स्थिति ऐसी बिल्कुल फरिश्ता जैसे, रुई का सा जैसे शरीर है, और अंदर आए बाबा ने क्लास चलाई, क्लास करी। और बाबा उस दिन, बाबा को जबकि सुबह भी तबीयत खराब थी एक दिन पहले भी और काफी खांसी वगैरह थी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। पूरी मुरली आप सुन लो यहाँ पर भी, ओम शांति भवन के नीचे जो ऑडियो विजुअल सेक्शन है ना, वहां सीडी बाबा की मिलती है 18 जनवरी अंतिम मुरली। एक बार भी जैसे बाबा को खांसी नहीं आई, गला साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का सूचक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे ना, तो हमारा योग बल जो है शरीर के कर्म भोगों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, कोई भी कर्म भोग हमें परेशान नहीं करेगा। बाबा ने पूरी मुरली चलाई और बस मुरली चलाते चलाते सुनते सुनते देखो कैसे बात होती है, मन जीते जगत। हमें सुनते सुनते मन में विचार आया, सामने ही बैठे हुए थे, कि बाबा कुछ हमारे लिए भी बोले कोई बात ऐसे है जो हमारे पुरुषार्थ में और आगे बढ़े। तो देखो संकल्प भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, भक्त संकल्प करता है भगवान क्या बोलते हैं, तथास्तु बस और अंतर्ध्यान। तो मन में संकल्प उठा और तुरंत ही 2-3 सेकंड बाद ही बाबा ने बस मुरली में नाम लेकर के कुछ बहुत अच्छे महावाक्य बाबा ने उच्चारे। तो ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, कि मन में हमारे संकल्प हुआ, बोला भी नहीं और तुरंत बाबा ने कैच किया। और ये ही बाबा अब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि हम बच्चों का भी अपने मन के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, अपने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय हो जाए कि बहुत आत्माएं हमारे सम्मुख आने वाली है अंत में। बस बाबा कहते हैं रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, हमारे स्वरूप को देख करके एकदम परिवर्तन स्वरूप पूरी परिवर्तित हो जाए आत्मा। तो ये तब होगा। अब करण करावनहार तो बाबा ही है, हम एक ही हैं, हमारे द्वारा अंत में भक्त लोग आएंगे, साक्षात्कार की इच्छाएं लेकर के आएंगे बहुत। कोई कृष्ण का भक्त होगा कृष्ण की, कोई राम के, कोई हनुमान के, कोई देवी का, अलग अलग भक्त अलग अलग इच्छाएं लेकर आएंगे, हम तो एक ही हैं। तो लेकिन साक्षात्कार कराने वाला बाबा है, तो जो भक्त जैसी इच्छा लेकर के आएगा बस हमारे तक जैसे वो संकल्प, क्योंकि हम संकल्प मन जीते जगत जीत हो चुके होंगे, मन में कोई संकल्प नहीं, तो उनके संकल्प को कैच करके बाबा हमारे द्वारा उनको वैसा ही साक्षात्कार कराएगा। तो ये हम सबने भी यज्ञ के इतिहास में पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना कि यज्ञ के शुरू में सबको बहुत साक्षात्कार होते थे ब्रह्मा बाबा से, बाबा को देखते थे कृष्ण का, नारायण का, नई दुनिया का, सतयुग का, बस सब बाबा से वो सब साक्षात्कार, क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन एक बार क्या वो भी सबने पढ़ा है, एक सरदार जी बहुत विरुद्ध थे ज्ञान के, उनके परिवार से आते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने संकल्प किया मैं बाबा को मार दूंगा, छुरा लेकर के आए थे। बस बहन बैठा के चली गई परिचय करा के, और जब उसने देखा बाबा और हम अकेले हैं, तो उसने छुरा निकाला और बाबा को जैसे ही मारने गया तो क्या हुआ, उसे किसका साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक देव जी का। क्योंकि अब बाबा कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन उसकी भावना भक्त की जो भी आया उसकी भावना गुरु नानक देव में थी, तो बाबा ने उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया और वो तो हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, ओहो गुरुजी मैं क्या पाप करने चला था, आपको मारने चला था, और मुझे माफ कर दो, पश्चाताप करने लगा, छुरा बाबा के पैर के पास रख दिया और बहुत रोता हुआ पश्चाताप करता हुआ चला गया। तो अंत में ये जो जो पार्ट बाप समान, बाबा ने कहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, ब्रह्मचारी तो सब बन गए, अब ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने के द्वारा जो जो प्रत्यक्ष हुआ, वो हम बच्चों एक एक बच्चे के द्वारा वो सारे पार्ट चलते हैं। ऐसा ना सोचे कि ब्रह्मा बाबा कहाँ कितना दूर और हम कहाँ, नहीं, हम एक एक बच्चे के द्वारा करण करावनहार बाबा है। बस हम अपना तन और मन ये बाबा को सौंप दें, न तन से कोई विकर्म न मन में कोई व्यर्थ संकल्प आदि, तो तन मन दोनों पूर्ण पवित्र होंगे, फिर देखो बाबा क्या क्या खेल कराता है। अंत में क्या साक्षात जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा पाठ चले वो सब चलने हैं हम बच्चों के द्वारा। तो बस बाबा ये करा के, और जब हम जगत जीत बोलते हैं ना, तो जगत के अंदर तो ये सब प्रकृति और पांच तत्व और पशु पक्षी जीव जंतु सब चीज आ गए, तो हम सब अपने लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, ज्ञान सब कर रहे हैं, लेकिन बाबा का देखा किस प्रकार से 18 जनवरी को बाबा मुरली चला के गए और बस थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाया, फिर बाबा रुक गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे, फिर दृष्टि देते हुए फिर बाबा थोड़ा आगे गए, फिर एक कदम रुके, फिर बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। बाबा को ये हो कि आज मैं बच्चों को शक्तियों से संपन्न करके चला जाऊं। दरवाजे पर जाके बाबा ने क्या बोला, सबने सुना है ना, क्या बोला, है? हाँ अच्छा, बाबा अब बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो इससे पहले बाबा ने कभी ये शब्द नहीं बोले। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जैसे भीष्म पितामह का था ना, वो भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान पहले से ही आभास था, ऐसी बाबा को भी जैसे उस दिन आभास हो गया। और हम सब ने सुना है बाबा गए और फिर दादी के हाथ में हाथ देह त्याग कर दिए। लेकिन यही स्थिति हमें चाहिए, अंत समय में यदि हमने परिस्थितियों के वश होकर शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, मानो अर्थ को एकाया, ये छत गिरी, गर्डर गिरा, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, खून निकल रहे हैं, हड्डी टूट रहे हैं आदि आदि, उस स्थिति में अगर शरीर छूटा तो क्या होगा, अंतमते सोगति, चारों तरफ ये हाहाकार, तब बुद्धि में बाबा कहता है कोई भी याद न रहे, ऐसी स्थिति होगी नहीं। इसीलिए हमें ये देखना है कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, अंतमते सोगति। लौकिक में भी होता है ना, अंत में लौकिक जॉब करते हैं 25, 30, 35, 40 साल तक भी कोई नौकरी करेगा, लेकिन लास्ट पे सर्टिफिकेट जो होता है LPC, उसके आधार पर ही उसका आगे का सारा कैलकुलेट होता है, चाहे ग्रेजुटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो, कुछ भी हो, सारा मदार ही उस अंतिम एक क्षण पर होता है, जिस जब हमारा बाबा ने बोला जब हम वो शरीर छोड़, और वो तब होगा जब हमारा कंटिन्यूअस अभ्यास होगा उस चीज का। और बाबा का देखा, बस बाबा गए, लेकिन वंडर तो उसके बाद देखा, आश्चर्य है, क्या देखा कि बाबा का शरीर, 18 जनवरी को रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, सारी रात शरीर रखा रहा, 19 का दिन और सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन कमाल की बात तो ये कि बाबा इतने समय के बाद भी ना बाबा का शरीर जैसे वैसे ही चमकता रहा, कोई भी काला नहीं पड़ा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था बाबा को, कोई केमिकल लोशन कुछ नहीं लगाया, हम तो यहीं पर ही थे देखा, लेकिन बिल्कुल बाबा का शरीर में, और जब अंतिम में जहां शांति स्तंभ है वहीं पर ही बाबा का संस्कार किया गया था। तो उधर जब ले गए बाबा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी वैसी नहीं, तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो शरीर एकदम अकड़ जाता है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बाबा के शरीर में। बहुत डॉक्टरों से हमने पूछा बाद में कई बार, कोई भी कहता नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम पहली बार सुन रहे, लेकिन हमने तो खुद अनुभव किया क्योंकि अंतिम समय तक बाबा के साथ थे। तो ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, मन जीते जगत जीत, जगत में प्रकृति के 5 तत्व भी आ गए, ये शरीर भी आया। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें अपने इन तत्वों को भी, 5 तत्वों से बना ये शरीर, इसको भी कैसे हम पावन करें, क्योंकि इसी पर ही ना, इस पर ही सारा आधार है। पहले जमाने में भी राजा, कोई चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था, विश्व महाराजन बनना चाहता था, तो क्या करते थे, चक्रवर्ती यज्ञ करते थे, यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ते थे, और घोड़े में जैसे लिखा होता था तख्ती पर कि भाई जो इनकी अधीनता स्वीकार करता है वो घोड़े को जाने दे, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है वो युद्ध करे। तो अभी भी ये मन रूपी घोड़ा हम सब ने छोड़ा हुआ है, विश्व महाराजन की राह पर हम सब हैं, और हमारे पीछे पीछे दिव्य गुणों और शक्तियों की सेना है, और हमारे सामने माया की सेना है। तो इसीलिए कभी माया की सेना का जोर हो जाता है तो युद्ध होता है, कभी हमारी जो दिव्य गुणों शक्तियों की सेना है हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा का क्या देखा कि बाबा का बिल्कुल अंत समय तक भी ये, हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है प्रकृति जीत। कैसे बनेंगे, एक एक बात को बस ध्यान में रखें। अभी तो 5 तत्वों की बड़ी हलचल होनी है, मानो पृथ्वी की बहुत हलचल होती है, अर्थक्वेक आते हैं, भूचाल आते हैं, चारों तरफ बिल्डिंग गिरती है, हाहाकार मचता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या बोला है, अगर आपका वॉइसलेस कनेक्शन हुआ, वो वायरलेस कनेक्शन है मोबाइल और टेलीफोन ये, लेकिन आपका वॉइसलेस कनेक्शन अगर हुआ, निर्विकारी बुद्धि का कनेक्शन, तो ऑटोमेटिकली आपके पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और यहां तो बहुत पत्र आते हैं, हमने खुद ही ऐसे ही कम से कम 15-20 पत्र लातूर के समय के, और गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था, या विदेशों में ऐसे अनेक सुने हुए हैं किस प्रकार से इधर इधर मकान का दीवार गिरे वो कमरा सेफ कैसे रह गया जहां बीके और जहां पर योग का वातावरण था। तो ये कैसे होगा ना, धरती कब हमारी रक्षक बनेगी, जब हमारे संस्कार उससे मैच करेंगे। वैसे बहुत संस्कार हैं धरती में, सबसे मुख्य संस्कार कौन सा है, दातापन का। पृथ्वी हर चीज देती है, पानी है, पेट्रोल है, अनाज है, फल है, सब कुछ चीज पृथ्वी से मिलता है। ऐसे ही बाबा चाहता है अभी हम बच्चों से कि हमारे सम्मुख कोई भी आए ना वो खाली हाथ न जाए। कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, प्रेम है, सद्भावना, आदर, सत्कार, सहिष्णुता, कोई भी चीज है, बस हमारे ऐसे वाइब्रेशन हो, उससे मित्रता का भाव हो, तो धरती को जैसे कि हमने उससे संस्कार मिला लिए, तो यही धरती अंत में हमारी रक्षा के निमित्त बनेगी, कभी भी हमारे मृत्यु का, दुख शांति का कारण नहीं बन सकती। ऐसी जल कौन सा विशेष गुण है, शीतलता, लेकिन सबसे बड़ा है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, गिलास में लो, गिलास का में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में, चम्मच में लो, चम्मच में भी सेट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे संस्कार भी ऐसे हों, हर आत्मा से मिलकर चल सके, एडजस्टेबल नेचर हो। ऐसा नहीं कि इनके साथ तो मिलकर चलना बहुत आसान है, इनके साथ बहुत कठिन है, नहीं। ऐसा हमारा वो हो, हर एक से एडजस्ट होके चल सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा में भी ये संस्कार थे ना, बच्चों के साथ बच्चा जैसा, बूढ़े के साथ बूढ़ा, जवान के साथ जवान, हरेक को लगता था बाबा मेरा है, हरेक को अपनेपन की महसूसता आती थी, क्योंकि बाबा हरेक के साथ वैसे चलता था। इसीलिए हरेक के साथ मिलकर के चलेंगे तो जल कभी भी जितनी सुनामी आएगा, फ्लड आएगा, हमारे दुख मृत्यु अशांति का कारण नहीं। ऐसी वायु का मुख्य गुण क्या है? उड़ाना, ऊपर। पृथ्वी हरेक को खींचती है, वायु हरेक को ऊपर ले जाती है। ऐसी हर परिस्थिति में हम हल्के रहे, भारी ना हो। जब जीवन में भारीपन आता है ना, तो वो आती है, तो उससे क्या होगा, जितने साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, तो पृथ्वी हमारे, ये वायु हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। ऐसी आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है? विशालता। और कैसे यूटिलाइज करते हैं आकाश के गुण को? सैटेलाइट होते हैं तो कम्युनिकेशन हमारा हो। आज जितने मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, उसी कारण चल रहे हैं कि सैटेलाइट छोड़े हुए हैं और हरेक से हमारा कम्युनिकेशन है। बस बाबा यही चाहता है, हमें विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना है, तो एक भी ऐसी आत्मा न हो जिनसे हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाए। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, उनसे तो हम बहुत देर तक बात करते रहते हैं। जिनसे नहीं होते हैं तो सामने से भी आएंगे तो अभी नजर बचा के चले जाएंगे, बात करने की दिल नहीं होती, संबंधों में कटुता आ जाती है। तो बाबा ने कहा है, अगर कोई भी ऐसी आत्माएं हैं तो हम विश्व महाराजन नहीं बन सकते। इसलिए कहीं पर भी कटुता हो, अपनी तरफ से पहल करें। हेलो बहन जी, हेलो भाई जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। वो एक बार नहीं करेगा, दो बार गुपचुप रहेगा, तीन बार, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली आइस ब्रेकिंग हो जाएगी और वो बिल्कुल तुरंत ही संबंधों में मधुरता। इनिशिएट तो करें, और इनिशिएशन के ही मार्क्स होते हैं, भले दूसरा चाहे रिस्पॉन्ड पूरा करे ना करे, लेकिन हमारी तरफ से अगर इनिशिएशन होता है उसके फुल मार्क्स हमारे जमा हो जाते हैं। और अंतिम में सूर्य का, हाँ, अग्नि का क्या गुण है? परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? हाँ? नहीं, वो तो रूप तो परिवर्तन, यही बाबा ने बताया ना, आत्मा, दुखी आत्मा आए बस रूप परिवर्तन। हम लोग बाबा के सामने ना जाते थे, साकार बाबा भी थे, बस ये पूछेंगे ये पूछेंगे, वो भूल करके बस बाबा का रूप देखा और सारे दुख की लहर अगर कुछ होती थी वो मिट जाती थी। तो इस तरीके से, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेन बात ये है कि हर पूरा का पूरा खेल ये मन का ही है। तो इसीलिए बाबा ने जैसे कहा ना, मन करा करके दिखाया, मन जीते जगत जीत। तो उस रीति से हम जितना जितना ये मन को ये अभ्यास करते चलें, जितना समय जहां जिस स्थिति में हम टिकाना चाहें उस स्थिति में टिकता जाए। और इसीलिए बाबा ने पांच जगह का जो सैर बताई थी अलग अलग, आप सबने अनुभव किया होगा, पता है, पांच, एक से शुरू किया परम धाम से, उसके बाद सतयुग आए, द्वापर तक आए, बुद्धि भाग जाती थी, फिर पकड़ के लाओ, फिर कहीं तक गए, बुद्धि भाग जाती थी। उसका भाव यही है कि बुद्धि भागे ना, बार बार अभ्यास हो तो मन हमारा डिजायर्ड जहां पर हम चाहें वहां टिक सके। तो इस रीति से अगर हम चलते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो बाबा, न तो बाबा के पास कोई और हम जैसे बच्चे हैं, ना हमारे लिए कोई दूसरा बाबा है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, बाबा को। तो इसीलिए बाबा के पास, बाबा हम ही वही आपके क्लब पहले वाले बच्चे हैं जिन्हें आपने हमें विजय माला का मणका बनाया था, अभी भी आप बना रहे हो और कलप कलप हम बनते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। साकार बाबा के सुंदर अनुभव प्रैक्टिकल जो थे वो आपने सुनाए, इससे हम समझ सकते हैं कि दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, तो हमारी साक्षी दृष्टा हम कैसे बन सकते हैं। और अंतिम बाबा के तीन, निर्विकारी, निरंकारी और निराकार स्थिति। ये अनुभव से ऐसा लगता है कि हमें इन बातों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। तो हम सभी अपनी स्थिति को मन जीते जगत जीत ब्रह्मा बाप समान बना सकते हैं। बहुत सुंदर रीति से आपने हम सबको स्पष्ट किया, आपका हम सभी धन्यवाद करते हैं।